الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کہ بے شک اللہ تم کو امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا. ٹھیک. تو اب یہ جو نظام ہے پورا، یعنی اب دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ لوگ بعض اوقات یہ سوال کرتے ہیں، ایک پرابلم میں پڑتے ہیں کہ بھئی ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بڑے اچھائی اور بڑے جھکے ملتے ہیں اور لوگ ہمیں ایکسپلوائٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں بیوقوف بناتے ہیں. تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نظام یہ نہیں ہے جس پر آپ چل رہے ہیں. خدا کا نظام کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ نے تم کو امر کیا ہے عدل اور احسان کا. یعنی ہر وہ احسان جو عدل کو ہٹا کر کیا جائے گا وہ معاشرے کو اچھا کرنے کے بجائے خراب کر دے گا. نظام ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ قرآن کے طول و عرض میں چلتے ہیں نا تو وہ بالکل کلیئرلی اور اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پر کلمات اہل بیت علیہ السلام میں بھی، کہ ہر جگہ آپ کو ایک سسٹم نظر آتا ہے. لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں نا مشیت الہی والی، تو وہ مطلب یہ ہے کہ مشیت الہی وہ اوور آرچنگ انٹیٹی ہے کہ جس کے انڈر میں ہر چیز آتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ اگر ہمارے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ مجھ پر فلاں چیز واجب ہے، ٹھیک ہے، تو کیا خدا پر بھی چیزیں واجب ہوتی ہیں؟ اب یہ ایک سوال ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر مجھ پر واجب ہے کہ میں غلط کام نہ کروں، یا مجھ پر واجب ہے کہ میں صحیح رستے کو فالو کروں، تو کیا اسی طریقے سے خدا پر بھی چیزیں واجب ہوتی ہیں؟ خدا کے لیے بھی واجب اور حرام ہے؟ یہ کوسچن ہے نا. تو وہاں پر قرآن کریم جب آپ کو من یشا والی جب بات بیان کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کوئی آربیٹریری طریقے سے خدا عمل کر رہا ہے، یا خدا کے پاس کوئی قانون نہیں ہے، خدا کسی نظام کو فالو نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے مشیت کے ہر چیز پر حاکم ہونے کا، کہ خدا جو ہے وہ کسی کے انڈر میں نہیں آتا ہے، کوئی قانون یا کوئی ہستی خدا سے بالا تر نہیں ہے کہ جس کی بنا پر خدا پر کچھ واجب ہو جائے. یہ فرق سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ میرے اوپر ایک چیز واجب ہو گئی ہے، تو میرے اوپر واجب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک نظام یا ایک ہستی میرے اوپر ہے، ٹھیک ہے، جو میری لائف کو گورن کر رہی ہے، جہاں سے میرے لیے رولز بن رہے ہیں، قوانین آ رہے ہیں، اور میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس کو فالو کروں، اس کا احترام کروں، اس کی پابندی کروں. ٹھیک ہے. تو کیا خدا بھی کوئی قانون کی پابندی کرتا ہے؟ کرتا ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، مثال کے طور پر کہ تمہارے رب نے لکھ لیا ہے اپنے نفس پر رحمت کو، ٹھیک ہے. لیکن یہ کتب ربکم کا کیا مطلب ہے؟ کہ خدا پر کوئی چیز واجب ہو گئی، یا عارض ہو گئی، یا خدا پر کوئی رول یا رولنگ ایسی ہے جو خدا پر حکمرانی کر رہی ہے؟ نہیں. وہاں پر آتا ہے کہ من یشا کا مطلب ہے کہ وہ جو کام بھی کرتا ہے وہ کسی اوپر سے آنے والے قانون کی بنا پہ نہیں کرتا، بلکہ اپنی مشیت کی بنا پہ انجام دیتا ہے وہ کام. یہ مطلب ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے. اس لیے کہ خدا نمبر ون سب سے مافوق ہے، سب سے بالا تر ہے. خدا کے اوپر کوئی نہیں ہے، خدا کو کوئی آرڈر نہیں دے سکتا، خدا کو کوئی، یعنی کہ اگر وہ کسی آرڈر کو فالو بھی کرتا ہے تو اپنی مشیت کی بنا پر فالو کرتا ہے، نہ کہ اس بنا پر آرڈر کو فالو کرتا ہے کہ اس کے مافوق کوئی اور ہے کہ جو اس کو آرڈر دے رہا ہے. تو پہلے یہ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب خدا اگر کہیں کہہ رہا ہے کہ جو وہ چاہے وہ کرے، اس کا مطلب ہے کہ خدا قانون سے آزاد ہے، یا وہاں پر کوئی قانون اور کوئی طریقہ ہی فالو نہیں ہوتا. یہ بات نہیں ہے. پہلا یہ نہیں، نظام ہے اور نظام اسی کا بنایا ہوا ہے، اسی کا قائم کیا ہوا نظام ہے.
اس نظام میں عدل ہے اور
हाँ, और उसने अपनी किताब के जरिए से, अपने नुमाइंदों के जरिए से वो निज़ाम उसको हमें बता दिया है, समझा दिया है। यानी जैसे मैं मिसाल के तौर पर, मैंने एक बात आपको बताई, एक मिसाल के तौर पर कि जो लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम नेकी करते हैं और एक्सप्लॉइट होते हैं, तो खुदा ये आपसे कह ही नहीं रहा कि आप इस किस्म की नेकियां करें। इन्ना अल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान, कि अगर आप माशरे में, कम्युनिटी में, सोसाइटी में अगर कुछ कायम करना चाहते हैं तो सबसे पहले अदालत कायम कीजिए, यानी हर एक को उसका हक मिले, फिर एहसान हो। ठीक है, ये कानून है, ये निज़ाम। या ऐसे ही इसके पैरेलल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का भी जुमला है कि जब आपसे पूछा गया था कि अदालत और सखावत में क्या बेहतर है, तो आपने फरमाया अदालत, और उसका रीज़न दिया आपने, क्योंकि आदल हर चीज़ को उसकी जगह पर रखता है और सखावत अच्छा होने के बावजूद चीज़ों को जगह से बेजगह करती है। इसलिए कह रहे हैं कि हम उस अदल को बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखते,
तरफ उसको अदालत मान रहे हैं ना, आधे लोग मान रहे हैं उसको अदालत के, उसको आपने जैसे कहा कि अदालत जहाँ होगी वहाँ सब कुछ होगा।
नहीं नहीं, अदल अदल
ना करो,
नहीं, हम अल्लाह से ये नहीं कह रहे कि आप अदालत ना करें, हम खुदा से ये कह रहे हैं कि आप अदल का मामला करते हुए उसमें फजल को हमारे साथ मद्देनजर रखें, क्योंकि इंसान, यानी कि यहाँ पर अदालत और सखावत का मतलब ये नहीं है कि जहाँ पर अदालत होगी वहाँ पर सखावत नहीं होगी, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि सखावत को अदालत के अंडर में रहना चाहिए। ठीक है, आप मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा कि मैंने ये कहा कि आप अदालत हटाकर एहसान करेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अगर फजल और एहसान अदालत अदल के मातहत होगा, यानी क्या, मिसाल के तौर पर क्या कि अगर खुदा कयामत में, नौजुबिल्ला, हम ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि एक इंसान है जिसने जिंदगी में नेकी की है और खुदा उसको जहन्नम में भेज दे, और एक इंसान है कि जिसने बुराई की है और खुदा उसको जन्नत में भेज दे, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि जो भी फजल होगा वो अदल के अंडर में होगा, यानी ओवरऑल जो कानून अदल है वो वायोलेट नहीं हो रहा होगा। यानी ये किसी के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि अपनी जिंदगी में बुराई कमाओ, खराबी वो लेकर आओ और उसके बाद कहा जी मैं तो जन्नत में जा रहा हूँ और खुदा मुझे जन्नत में भेज देगा, ये नहीं है। तो ये मकसद है इसका, ये निज़ाम। तो आप भी फजल करें, आप भी सखावत करें, लेकिन पहले अदालत को कायम करें। इन्हें माशरे के अंदर आप यही समझे ना कि जैसे हमारा माशरा, पाकिस्तानी माशरा है, वो फजल वाला माशरा है है ना भाई, मेरे भाई हो चलो सब ले जाओ, मेरे दोस्त हो तुम्हारे लिए सारे दरवाजे खुले हैं। तो इस किस्म का फजल देखें कहां पहुंचा दिया उसने उस सोसाइटी को। अदल पहले है, फिर उसके मातहत फजल है। अच्छा, तो आज हमारी जो गुफ्तगू है इंशाअल्लाह वही तौहीद के हवाले से, हम उस पर बात कर रहे थे, बराहीन पर, यानी जो रीजंस हैं, जो दलाइल हैं खुदा पर और खुदा की मौजूदगी पर या खुदा की वहदानियत पर जो कुरान करीम से अखज़ होते हैं। तो उसमें अब तक हमने चार बराहीन पर बात की। अच्छा, और ये बराहीन को भी हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक बराहीन आफाकी, यानी कि वो जो हमें ज़िंदगी में नज़र आती हैं, कायनात में नज़र आती हैं, वो दलाइल। और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम आगे जाके बात करेंगे बुरहान अनफुसी, यानी जो इंसान के नफ्स में दलाइल वजूद खुदा है। तो उसमें अब तक हम चार बराहीन पर गुफ्तगू कर चुके हैं, और लास्ट टाइम हमने बुरहान नज़्म पे बात की थी काफ़ी तफसील से। आज हम इंशाअल्लाह पांचवी दलील, जो बुरहान हयात व मर्ग है, यानी मौत व ज़िंदगी किस तरीके से वजूद खुदा पर दलील बनती है, उस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। और उसमें जो हमारा मेन रेफरेंस है, जैसा कि अब सब सुनने वालों के जहन में महफूज ही हो गया होगा कि आयतुल्ला जवादी आमली की तफसीर मौजूई तौहीद दर कुरान। अच्छा, गुफ्तगू को शुरू करने से पहले 5-7 मिनट मैं लेना चाह रहा था कि क्योंकि अब ये हमारा बस मुहर्रम से पहले समझ लें सिलसिले का आखिरी दर्स है, तो उसमें एक छोटी सी बात लाइक अ मैसेज कह लें या रिमाइंडर कह लें कि जो लोग भी इसको सुन रहे हैं वो अपने जहन में महफूज रखें, जो अहम बात है वो ये है कि खुदा ताला ने जब इंसान को खल्क किया है तो बुनियादी तौर से दो चीज़ों के साथ खल्क किया है, यानी एक इंसान को बसीरत दी है और दूसरा इंसान को एक हदफ दिया है, एक मकसद दिया है ज़िंदगी का। ठीक है, इन दो चीज़ों के साथ खुदा ने हमको पैदा किया है कि एक इंसान जो है वो अपने आप पर, अपने वजूद पर बाबसीरत भी हैं, हर इंसान है, और दूसरा ये कि हर शख्स जो है वो एक हदफ रखता है और उस हदफ को भी जानता और पहचानता है, और इसी इन्हीं दो चीज़ों को या हदफ तक पहुंचने के लिए खुदा ताला ने फिर हमारे लिए तमाम जितने भी इंतज़ाम किए हैं, चाहे किताब हो, चाहे पैगंबर हो, चाहे हमारे वजूद के अंदर फैकल्टीज़ हों, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हमारी हेल्प करती हैं हमें हमारे मकसद तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इसमें क्योंकि इंसान इसके साथ साथ बाख्तियार भी हैं, एक चॉइस भी रखते हैं अपनी लाइफ में, लिहाजा इंसानों के जिन रस्तों पर वो चलते हैं वो सब एक जैसे नहीं होते, वो अलग अलग रस्ते हो जाते हैं लोगों के अपने इख्तियार की बिना पर या शायद अपनी सलाहियतों की बिना पर भी। उसमें दो राहें ऐसी हैं, स्पेशली जब हम इवन दीन को अडॉप्ट करते हैं तो वहाँ पर दो रास्ते हैं जो बहुत ही डिस्टिंक्ट होते हैं। यानी मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा कि जो शायद हकीकतन किसी रास्ते पे नहीं है, उनकी बात नहीं कर रहा, मतलब ये कि जो एक हदफ लेकर, और वाकई हदफ का मतलब क्या है, देखें हदफ जन्नत हदफ नहीं है, ठीक है, एक बात जहन में रखिएगा, जन्नत हदफ नहीं है, यानी वो जन्नत जिसका तसव्वुर हमारे दिमागों में कि वहाँ बहुत अच्छा घर मिल जाएगा और खाना पीना मिल जाएगा और मज़े मिल जाएंगे, ये सब वो कोई हदफ नहीं है। हदफ का मायना ये है कि खुदा ने मुझे जो कुछ बनाना चाहा है, मेरी खिलकत का जो मकसद है उस तक पहुँचना, वो हदफ है। ठीक है, जो समझे, लेकिन हदफ का ताल्लुक किसी बैरूनी चीज से नहीं है, बल्कि हदफ का ताल्लुक खुद मुझसे है। यानी जो इंसान इस बारे में एक नजरिया रखता है कि मुझे खुद क्या बनना है, मैं खुद एक मुसाफिर की मानिंद हूं, मैं खुद एक एवोल्यूशनरी क्रिएचर हूं, एक इर्तिका पाने वाली मखलूक हूं, और मुझे एक मेरी एक मंजिल और एक मकाम है, हदफ उसको कहेंगे आप। ठीक है, हदफ इसको नहीं कहेंगे कि मैं बहुत आरामदेह घर में जाके बैठ जाऊं और मैं मज़े करूं और खूब खाऊं पीऊं, ये कोई हदफ नहीं है। ठीक है, ये इसका पर्पस ऑफ क्रिएशन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो दीन बहरहाल इंसान को हदफ मंद बनाता है जैसे मैंने कहा, और उसके लिए तमाम जो टूल्स, इक्विपमेंट, आलात, अब्जार सब हमारे अंदर रखे हुए हैं वो उस हदफ तक पहुंचने के लिए। उसमें यानी जो लोग दीन को इख्तियार करते हैं या दीन की राह को चलते हैं ना, उनमें दो किस्म के समझ लें आप ग्रुप्स बन जाते हैं। एक ग्रुप वो होता है कि जो मेनली अपने इर्द गिर्द यानी सेंसिबल और टेंजिबल चीजों को अपनी आंखों के सामने रखता है और वहां से किसी हकीकत तक पहुंचना चाहता है। ठीक है, यानी जो कुछ आपके हिस हैं, हवास हैं, जो कुछ आपके इर्द गिर्द है, दुनिया है, मादा है, आफाक है, और एक किस्म का दूसरे किस्म के ग्रोह जो बहुत ज्यादा किल्लत में पाए जाते हैं, वो सोर्स ऑफ लाइफ या जहां से जिंदगी शुरू हुई है या जो जिंदगी की बुनियाद है या जो जिंदगी की हकीकत है, अगरचे के जाहिरन वो उनको नजर नहीं आ रही होती, अगरचे के जाहिरन इब्तिदा में उनके लिए ऑब्स्क्योर होती है, लेकिन उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत उसी चीज की होती है। यानी वो अपने दिल की गहराइयों में इस बात को अच्छे तरीके से जान रहे होते हैं कि अहम वही है, बाकी तमाम की तमाम चीजें जो है ना वो या तो एक तस्वीर है या एक शक्ल है या एक सूरत है या एक एक्सप्रेशन है या एक इक्वेशन है, लेकिन हकीकत नहीं है। ठीक है, ये दो बहुत ही डिस्टिंक्टली डिफरेंट ग्रुप्स हैं कि एक किस्म के लोग वो कि जो जो नजर आता है, जो दिखाई देता है, जो महसूस होता है, जो आप पर ज़ाहिरन इम्पैक्ट डालता है, जो आपको इम्प्रेस करता है, आप उसी को हकीकत समझ लेते हैं या हकीकत जैसा समझकर, और फिर उसके एक्शन रिएक्शन में या उसकी रिस्पॉन्सेज में आपकी लाइफ बिल्ड होना शुरू होती है। और दूसरे किस्म के अफराद वो होते हैं कि जो डायरेक्टली मतलब सोर्स ऑफ लाइफ, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, सोर्स ऑफ क्रिएशन, उसी को ही सब कुछ जानकर और फिर उसके पैराए में पूरी जिंदगी को देखने की कोशिश करते हैं। मैं ये कोशिश करने के लफ्ज क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि वो शुरू में बिल्कुल ही एक ऐसे मतलब तसव्वुर की मानिंद होता है कि जो आपको लगता है कि शायद कुछ है ही नहीं, ठीक है, लेकिन वो रफ्ता रफ्ता वो चीजें अनफोल्ड होती हैं, वो वाली चीज जो है, यानी आप समझ ही रहे हैं कि यानी उसको मैं अगर और थोड़ा फॉर्मल कर दूं तो फॉर्मल उसमें ये है कि लोग, ज्यादातर लोग वो हैं कि जो मखलूक से खालिक तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग वो हैं जो खालिक से हर चीज को देखने की कोशिश करते हैं। यानी उनके लिए जो कुछ भी है ना वो खालिक है, जो कुछ भी है वो असल हकीकत है, और उससे हट कर वो किसी चीज की ना अहमियत के कायल होना चाहते हैं और ना किसी चीज को अपनी जिंदगी में जगह देना चाहते हैं कि जो खालिक के बिना हो या खालिक की रिलेशनशिप के बगैर लाइफ में एंटर होने की कोशिश करे या एंटर हो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही
जी? इसी में सवाल है, ये जो आपने कहा कि खालिक से मखलूक को देखते हैं, तो मुझे अच्छी तरह याद है शायद आप ही के लेक्चर्स में या कहीं और मैंने इस चीज को सुना है या पढ़ा है, क्या किया है, कि वो जो कॉन्सेप्ट है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वाला, तो वो तो है ही यही कि खालिक से मखलूक और फिर मखलूक से खालिक, और फिर जो समझने में क्या कह रहा हूँ, यानी कि मखलूक से खुदा तक जाएगा और फिर खुदा से मखलूक तक आएगा। ऐसा तो कोई भी नहीं है कि डायरेक्ट खुदा तक जाए और फिर मखलूक तक आ जाए, तो उसमें बल्कि मैंने शायद इनका अपने अरबी का या आपने शायद बयान किया था या मैंने किसी और के लेक्चर में सुना है कि ये सफर जो है वो इस तरह से होता है कि जिसको हम रसूल अल्लाह की जो मेराज थी वो यही थी कि मखलूक से खुदा तक गई थी और वो रसूल का कमाल।
सफर की बात नहीं है, सफर की बात नहीं है, ये नजर की बात है। मैं सफर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नजर की बात कर रहा हूं, निगाह की बात कर रहा हूं, निगाह की बात कर रहा हूं कि देखें आप जब यानी जो मैं दो मुख्तलिफ किस्म के लोगों के गुफ्तगू कर रहा हूं कि जैसे जब कोई भी इंसान है एक आलिम बनना चाहता है, एक आरिफ है, ठीक है, यानी कि वो जाहिरन अपने बदन को इबादत में लगाता है, उलूम के रस्ते पे जाता है, इल्म इबादत और बाकी तमाम चीजें, यानी वो जाहिरी अपने बदन को, लेकिन उसकी नजर किस पर है, क्या वो लोगों में फंसा हुआ है और वहां से कदम ब कदम खुदा तक जाना चाह रहा है, या उसकी नजर उस हकीकत पर है, जैसा मैंने कहा अभी वो उसको नहीं पहचान रहा है, इवन ऑब्स्क्योर है, लेकिन वो इस बात को दर्क कर चुका है कि ये जितना कुछ भी है ना ये एक हकीकत से वाबस्ता है। अभी मैं उसको नहीं जान रहा हूं, अभी मैं उसको नहीं पहचान रहा हूं, लेकिन मेरी नजर में मेरी जिंदगी में अहम वही है। मैं तो नजर की बात कर रहा हूं, ठीक है, आप दुनिया में हरकत करेंगे, आप दुनिया में अमल करेंगे, आप दुनिया में मुजाहिदे करेंगे, सब आप यही करेंगे, इसी में करेंगे। मैं उसको इनकार नहीं कर रहा कि आप यहाँ से ट्रैवल करके आगे बढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो हदफ, वो नज़र आपकी किधर है, फोकस आपका किधर है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग जो अहले दीन भी हैं, अहले दयानत भी हैं, उनका फोकस किस पर है? अशिया पर है, जवाहिर पर है, जो उनको नजर आता है उस पर है। ठीक है, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग अपनी जिंदगी में किस चीज को अहमियत देते हैं, हम किससे ड्राइव होते हैं, किससे ड्राइव होते हैं, हमारी जो रिलेशनशिप्स बनी हुई हैं मुख्तलिफ हमारे पैरेलल दुनिया में। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर कि अगर हमने दीन के साथ भी अपना ताल्लुक बनाया है, तो दीन के साथ हमारा ताल्लुक क्या है कि हम मुख्तलिफ किस्म के कामों को अंजाम देंगे, फॉर एग्जांपल इबादत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हर मजहब वाले के पास अपना एक पूरा सेट ऑफ ट्रेडिशंस है, उन सब चीजों को अंजाम देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम मतलब सवाब की तवक्को रखेंगे या अपने अजर को चाहेंगे, और उसके जरिए से हम किसी अच्छे मकाम तक पहुंचना चाहेंगे। ठीक है, ज्यादातर दीन यही नहीं है।
तो हदफ तो इसमें भी खुदा ही है ना,
नहीं? खुदा किधर
है? मेन हदफ तो वही है कि खुदा की रजा के लिए करना है।
खुदा की रजा के लिए करना एक बिल्कुल अलग बात है। ठीक है, और दूसरा मसला यहाँ पर यह भी है कि हम खुद खुदा की रजा को किन पैरामीटर्स पे जांचते हैं, किस पे देखते हैं? जन्नत जहन्नुम या उससे भी ज्यादा नीचे दुनिया का आराम और तकलीफ। यानी अगर आप गौर करें कि बहुत सारे इंसान जो हैं वो दुनिया के आराम और तकलीफ में खुदा की पसंद और नापसंद को तोल रहे होते हैं कि अगर खुदा ने मुझे दुनिया में मजेदार लज्जतों वाली जिंदगी दे दी तो इसका मतलब है खुदा मुझसे राजी है, और अगर दुनिया में सख्तियां आ गई तो खुदा मुझसे नाराज है। ये तो कुछ भी क्राइटेरिया नहीं बन रहा ना। तो यानी इसका क्या मतलब है, यही जो मैं कह रहा हूं कि हमारे दीन के जितने भी मामलात हैं ना वो सब किधर है, उसका फोकस किधर है? मखलूकात पर है, अशिया पर है, चीजों पर है, और फिर अल्टीमेटली यानी कि वो तमाम की तमाम चीजें जाके फंस जाती हैं आपकी अपनी पसंद और नापसंद पे, अपनी चाहत और मनमानी, और फिर वो सब चीजें यानी वो एक पूरा उसका एक मलोबा बन जाता है। और दूसरी तरफ जो लोग हैं यानी वहां पर यानी जैसे मिसाल के तौर पर जो उसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि खुद शुहदाए करबला की बहुत बड़ी मिसाल है कि रजाए खुदा उसको कहते हैं। ठीक है, रजाए खुदा के लिए काम करना या खुदा को हदफ बनाना उसको कहते हैं कि जब आपके पास मतलब खुदा की वजह से आपको हर चीज छोड़ देना पड़े तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यानी अगर अगर उन शुहदा ने अपने घर बार बाकराहियत छोड़े होंगे तो कोई कमाल नहीं किया फिर, या जन्नत के लिए छोड़े होंगे तो भी कोई खास काम नहीं किया। सही, जो कि हम समझते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बरकत से उन लोगों ने उन मकामात को तय कर लिया था कि जहां वाकयन उनके सामने हकीकतन रजाए खुदा के सिवा और कोई दूसरी चीज नहीं थी, ये होने वाली। ठीक है, मैं आपको एक दो छोटे छोटे वाकयात सुना दूं ताकि शायद और फिर बात। तो यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि देखें ये दो राहें जो है ना, ये दो राहें बिल्कुल अलग हैं और ये को एग्जिस्ट नहीं करती हैं। यानी अगर कोई ये तवक्को रखे कि मैं एक कदम इस रास्ते पर रखूंगा, एक कदम उस रास्ते पर रखूंगा, ये इस तरीके से चलना पॉसिबल नहीं है। मेरा असल कहने का मतलब पॉइंट ये है, यानी या आप इधर होंगे कि आपका पूरा दीन जो है वो मखलूकात की रिलेशनशिप्स की बिना पर डिफाइन हो रहा होगा, या आप उधर होंगे कि आपका पूरा दीन खुदाई हकीकतों की रिलेशनशिप की बिना पर डिफाइन हो रहा होगा। ठीक है, ये दो अलग रास्ते हैं। और हम बदकिस्मती से दोनों को मिलाने की कभी कभी कोशिश करते हैं जिनको ये बात समझ में आती है, और नतीजतन फिर वो बड़ी बुरी ठोकरें रखती हैं या कहीं के भी नहीं रहते, ना इधर के ना उधर के, अजीब सी हालत हो जाती है। ठीक है, मैं आपको ऐसे कुछ एक दो मिसालें शायद आपको याद भी आ जाएं, पहले भी हमने बात की थी कि आयतुल्ला बहजत के हवाले से बयान किया जाता है कि जैसे उन्होंने कुछ लोगों को काफ़ी, यानी जिस ज़माने में वो दो चार साल ही रहे मिर्ज़ा अली काजी की सोबत में, फिर उनके उनकी भी शिकायत हो गई थी, फिर उनके अब्बा तक शिकायत पहुंच गई और फिर उनको वालिद साहब ने कहा था भाई तुम आ जाओ वहां से। तो जिस ज़माने में वो थे तो वो आयतुल्ला खुई के दुरूस फिक में बैठते थे, और उन्होंने कुछ ऐसे इश्कालात किए उनके दर्स में, फ़िकी दर्स में, कि जो उनके लिए थोड़ा जवाब देना मुश्किल हुआ। हालांकि आयतुल्ला खुई फ़िकी एतबार से बहुत बुलंद पाया शख्सियत, तो उन्होंने उनसे जब कुछ सवाल किया पूछा उस बारे में, तो उन्होंने आयतुल्ला बहजत ने कहा कि मेरा मकसद कोई खामखा आपको तंग करना नहीं था, मैं आपको सिर्फ ये मतलब इस बात से आगाह करना चाह रहा था कि हकीकत तक पहुंचने का खाली वो रास्ता नहीं है जिस पर आप चल रहे हैं, दीगर रास्ते भी हैं, और अगर आप उन राहों से यानी उन जगहों से चीज़ों को जब हकायक को देखते हैं, दीन को देखते हैं, तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव वजूद में आता है। तो कुछ अरसे के लिए फिर आयतुल्ला खुई भी मिर्ज़ा अली काजी के दुरूस में गए और शामिल हुए, और फिर उनके साथ कुछ वाकयात हुए जिसकी वजह से फिर वो अलग हो गए कि ये चीज़ दुरुस्त नहीं है या सही नहीं है। लेकिन आयतुल्ला खुई का एक जुमला बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बारे में कि अगर मिर्ज़ा अली काजी सही हैं, दुरुस्त हैं, तो फिर वो आसमान है और हम जमीन हैं। यानी जो कुछ वो बता रहे हैं और सिखा रहे हैं और जिसकी तरबियत दे रहे हैं लोगों को, और जाहिर है कि वो बहुत छोटा सा और मखसूस हल्का ही था, तो फिर वो आसमान है और हम जमीन है। ठीक है, तो ये फर्क कितना है इन दोनों रस्तों में, जितना जमीन और आसमान में फर्क है। और इंसान या आसमान पर होता है या जमीन पर होता है, उसका ये नहीं होता कि एक कदम जमीन पर हो एक कदम आसमान पर हो, इस तरीके से कोई नहीं चल सकता। ठीक, और दूसरा एक और वाक्य है बहुत, वो भी बड़ा मज़ेदार है, उनका जवाद अंसारी, आयतुल्ला जवाद अंसारी हमदानी, उनकी उनके तारीख़ इंतकाल जो है वो 1379 हिजरा है। अच्छा, और उनकी भी बहुत ही अजीब ज़िंदगी है कि एक मिर्ज़ा अली काजी के एक शागिर्द थे शेख हसन अली नजाबत, उनको उन्होंने भेजा था वहाँ नजफ़ से वापस ईरान जब जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि तुम इनके पास आगा जवाद अंसारी के पास जाओ, उनकी सोबत में वक्त गुजारो। और एक बड़ा अजीब तारुफ उन्होंने कराया था कि ये वो, यानी जवाद अंसारी वो हैं कि जिन्होंने अपनी तौहीद को खुदा से हासिल किया है। ठीक है, और फिर वो आए, और जब तक वो जिंदा रहे तो शेख हसन अली नजाबत उनके सबसे करीब तरीन उनके अस्हाब या शागिर्दों में से थे। तो ये खुद जब जवाद अंसारी, इन्होंने कुम में एक अरसा गुजारा बड़े बड़े मुश्तहिदीन की सोबत में, और वहाँ से उनको पूरा इजाज़तनामा मिल गया इश्तेहाद का, वो जो पूरा होता है, और वो कह लें आयतुल्ला हो गए इस रस्मी माना में। और फिर उसके बाद वो हमदान आए, और हमदान में आके उन्होंने जो मस्जिद है वहाँ पे नमाज पढ़ाना या वही वो तबलीगा जो भी एक उसूली फ़िकही वो जो है उलमा का एक तर्ज़ अमल होता है, उस ज़माने में उनको एक ख़बर मिली कि कोई दरवेश आया है और उसके गिर्द काफ़ी, यानी वो काफ़ी मजमा अट्रैक्ट कर रहा है, और ज़ाहिरन दरवेश या सूफिया जो हैं ऑब्वियसली जो ख़ास तौर से जो फ़िकही और उसूली उलमा या मुश्तहिदीन हैं उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा, मतलब वो उनको बहुत ही ज़्यादा सख्ती से अपोज़ करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने फिर ये सोचा कि मैं जाऊं और उसको इस्लाह करूं उसकी, तो तो एक दिन वो उनकी सोबत में गया जहां पर वो दरवेश थे, बातचीत कर रहे थे, उनकी कुछ बात सुनी, और उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई ये सूफी गरी जो है और इस किस्म की चीज़ें ये दुरुस्त नहीं हैं और ये खिलाफ़ इस्लाम हैं और ये मसाइल, ये आप ना करें ये काम। उस दरवेश ने उनको एक बड़ा अजीब जुमला कहा कि तुम जिससे मुझे मना करने आए हो ना, आज के बाद से इस आग में तुम खुद जलोगे। तो उसके बाद फिर उनका वही कहना कि फिर मैं, मेरे अंदर एक बेचैनी पैदा होना शुरू हुई उसके बाद से। और फिर यानी उनका जो पूरा एक जिंदगी का सफर है वो बहुत ही अजीब है, बहुत ही अजीब है कि यानी उनकी ये हालत थी। मैं उनके इंतकाल का थोड़ा सा वाकया आपको और ये सब मैं उनके जो मतलब सुन के बता रहा हूँ, ठीक है, ये वाकयात मैं पढ़ के नहीं बता रहा, खुद उनके बेटे की जबानी उनकी वीडियोस जो हैं, उनके बेटे हैं डॉक्टर अली अंसारी, ये सब उनके उनके बताए हुए वाकयात सुन के बता रहा हूँ कि उनका इंतकाल, हालांकि वो बड़े जिस्मानी तौर पर बड़े कवि हैकल मजबूत शख्सियत थे, लेकिन इन हिज 50s बहुत उनको मसला हो गया। और फिर जब उनको डॉक्टर ने देखा है तो बाहर निकल के बेटे से कहा कि ये किसी के इश्क में मुब्तला है क्या? तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता चला? कहने लगे इनका दिल जो है ना, दिल पिघल गया है। तो उन्होंने वापस आके बताया डॉक्टर का जुमला, तो उन्होंने कहा है कि ये डॉक्टर है बहुत हाजिक, लेकिन उसको असल वजह नहीं पता। यानी कि एक इंसान के इश्क़ खुदा में एक इंसान का दिल इस कदर वाकयन दिल मुतासर हो जाए। और वो 59 ईयर्स की एज में वो इंतकाल कर गया, ठीक है। तो ये जो राहें हैं ना, इसको अब हमारी मर्जी, हम इसको अफसाना समझें, हम इसको कहानी समझें, हम इसको कुछ भी समझें, लेकिन मैं ये यही बात शायद एक एहसास दिलाना चाहता हूँ कि शायद किसी को ये बात समझ में आ जाए या कोई इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर ले इन मामलात को, कि ये दो अलग राहें हैं। और हकीकतन जब कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम जिस तरीके से के इमाम अली अलैहिस्सलाम का पूरा खुतबा है 191 नहजुल बलागा में, जो खुतबा हुमाम के नाम से मशहूर है, कि जिसमें आपने जब उन्होंने कहा था कि मुझे औसाफ मुत्तकीन मेरे लिए बयान करें गोया मैं उनको देख रहा हूँ, और उसी दौरान में वो इंतकाल कर गए, यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम के बयान करते करते वो इंतकाल कर गए औसाफ मुत्तकीन के। वो इस कदर वो एब्जॉर्ब कर रहे थे उस शिद्दत से उन चीजों को कि उनका बदन उसको बर्दाश्त नहीं कर सका, ठीक है। तो बस इस बात को जहन में रखें कि ये जो तौहीद की राह है ना, ये तौहीद की राह, ये फॉर्मल रिलीजन वाला रास्ता नहीं है। राह है तौहीद, यानी कि जो जिसे आप कह लें कि एक आरिफ की जो जिंदगी होती है, तो उसकी जिंदगी क्या होती है? उसकी जिंदगी का पूरा फोकस शिफ्ट होता है मखलूक से खालिक की तरफ। और फिर क्योंकि जो खालिक है, जो रब है, जब वो उस पर फोकस करता है तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस ये आता है कि मखलूक पर आप जितना भी तवज्जो करेंगे, मखलूक में ऐब है, नक्स है, खराबी है, जितने भी आला मेयार का इंसान आपको मिले उसकी जात में ऐब और नक्स है सिवाय मासूम के। लेकिन जब तवज्जो खालिक पर फोकस होती है और वहां से जो कमाल है, जो एब्सोल्यूट ब्यूटी है, ठीक है, वो जब इंसान का नसीब, जैसा मैंने कहा ना शुरू में, ये सब ऑब्सक्योर होता है, कुछ ही नहीं पता होता, सिर्फ एक एहसास होता है, एक तसव्वुर सा होता है, लेकिन दिल की गहराई में एक यकीन होता है कि नहीं यही सच है, और फिर बंदा उस रास्ते को फॉलो करता है। तो वहां से जो वो हुस्न जमाल वाला और वो खूबसूरती और वो कमाल जब वो इंसान पर खुलना शुरू होता है ना, तो फिर यही हाल होता है, जैसे मैंने अभी जन बुजुर्ग का हाल आपको सुनाया, कि फिर वो सही मानों में जो ट्रू लव है, हकीकी इश्क है, कि जिसके जलवे हमें बाज़ औक़ात अंबिया की, आइम्मा अलैहिस्सलाम की, कि जब वो नमाज में बेखुद हो जाते हैं, अपने आप से यानी अपनी हालत से बाहर आ जाते हैं, फिर वो चीज़ें जो है ना, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि अगर फोकस वहाँ पर है और वो जो आफ्ताब हकीकत है या आफ्ताब तौहीद है, अगर वो इंसान की ज़िंदगी पर तुलू होना शुरू हो जाए और वहाँ से कबूलियत हो जाए इंसान के लिए कि खुदा बंदे को कबूल कर ले, तो वो ब्यूटी जो इंसान एब्जॉर्ब कर रहा होता है और वो कमाल और वो जमाल, उसका फिर कोई दूसरा नेमुल बदल नहीं होता। और वो चीज़ इंसान को अपने अंदर इस तरीके से जज्ब कर लेती है, खींच लेती है, गुम कर लेती है, कि फिर वही बात होती है कि जो इर्द गिर्द के अफराद होते हैं, लोग होते हैं, जो भी होते हैं, मतलब उनकी नज़र में कोई मज़ूब हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, लेकिन वो उस बात को फील नहीं करते, क्योंकि जाहिर है उन्होंने खुद इस बात को सेंस ही नहीं किया होता, उन्हें खुद पता ही नहीं होता कि ये मामला क्या है। ठीक, तो बस मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे लिए जो है ना, ये दीन के नाम पर दो राहें हमारे पास मौजूद हैं इन ब्रॉड टर्म्स, और ये जितना कुछ भी हमें बताया गया है, ख़ास तौर से कुरान करीम में बउनवान तौहीद जो कुछ बताया गया है, तो वो हमें उस तरफ मुतवज्जे कराने के लिए है, उन हकीकतों की तरफ मुतवज्जे कराने के लिए, कि जो अनफॉर्चुनेटली हम जिसको इग्नोर कर रहे होते हैं, ठीक है, उसी जाहिर के फंदे में फंस के, जाहिर के अंदर। तो ये बस एक बात है, इसको जहन में रखिएगा कि अगर हम इस काबिल हो सकें, अपने आप को इस काबिल कर सकें कि अपने फोकस को इधर से उधर शिफ्ट कर सकें, अगर हम वहां तक जा सकें, तो फिर आप खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां देखेंगे, बहुत ज़्यादा जो है ना फ़र्क आपको महसूस होगा दोनों मोड्स ऑफ लिविंग में, या दोनों तरीक़े जिनसे लोग दीन को कबूल करते हैं या अख्तियार करते हैं, कि वो जो प्योरली तौहीदी राह है वो इंसान को जो कुछ बना देती है, इंसान को जिस जगह तक पहुँचा देती है, और वो जो एक एक नॉर्मल रिलीजन वाला रास्ता है वो इंसान को जो कुछ बनाता है, उसमें बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क है, वही जो कहा ना ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ठीक है, तो ये एक बात थी जो मैं कहना चाह रहा था कि इन तमाम चीज़ों को अगर यानी जितनी भी बातें हम कर रहे हैं, अगर इसको इस तनाजुर में देखा जाए इंशाल्लाह कि यानी इसका जो बुनियादी मकसद है वो क्या है, कि हमारा फोकस तौहीद बने, हमारा फोकस ज़ात अक़दस इलाह बने, हम अपने आप को उससे जोड़ना हमें समझ में आए, उससे उसका हमसे ताल्लुक समझ में आए, और वो रास्ता बने कि जो नूर खुदा को हमारे वजूद तक और हमारे कल्ब तक पहुंचा सके। तो यानी क्योंकि मेरी नीयत जो है इंशाल्लाह वो यही है, अपने लिए भी, आप सब लोगों के लिए भी, उन तमाम लोगों के लिए भी कि जो भी इस गुफ्तगू को सुनते हैं, कि खुदा हमको जो है वो यहाँ तक ले जाए, यानी कि मेरी नीयत वो नहीं है कि मैं आपको उस तरीके से कि एक नॉर्मल के एक सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स पे ले जाऊँ, या ये कर लो या ये नहीं कर लो, ये नीयत नहीं है। मैंने कहा कि आज हम अगर एक मरहले को, एक फेज़ को ख़त्म कर रहे हैं, तो मैं इस पैगाम को दोबारा अहिया कर लूँ। अच्छा, अब उसके बाद हम आते हैं अपनी बुरहान पर, बुरहान मौत और ज़िंदगी। यहाँ पर ये फरमाते हैं कि जो भी तौहीद रुबूबी है, अच्छा मौत और हयात का ताल्लुक तौहीद के किस मरहले से है, तौहीद रुबूबी, यानी मौत और हयात का निज़ाम खुदा की रुबूबियत से मुताल्लिक है, रुबूबियत से मुताल्लिक है। और रुबूबियत का मतलब क्या है, रुबूबियत का मायना यह है कि हर मखलूक को की रहनुमाई करना कि वो اپنے کمال تک پہنچ سکے, یہ ربوبیت ہے, یہ رب ہے, رب العالمین. رب العالمین یعنی عالمین میں موجود ہر مخلوق کو خدا نہ صرف باقی رکھتا ہے بلکہ اس کی مکمل رہنمائی کرتا ہے کہ وہ اپنے ہدف خلقت اور اپنے کمال تک پہنچ سکے. اس کو کہتے ہیں ربوبیت, یہ مطلب ہے رب العالمین کا. تو اس ربوبیت والا جو نظام ہے اس کے اندر ایک بہت اہم پہلو کیا ہے, اس کا ایک بہت اہم لنک کیا ہے, موت و حیات, زندگی اور موت. تو اصل مرگ اور زندگی حق ہے اور ثابت ہے اور رب العالمین کے ہاتھوں میں ہے. اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ موت و حیات چار اس کے پہلو ہیں جو قابل غور ہیں. نمبر ون, یہ قابل انکار نہیں ہے, یعنی موت اور زندگی دونوں کا انکار پاسبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی ایتھیسٹ ہے وہ خدا کا انکار کر سکتا ہے, لیکن کیا وہ زندگی اور موت کا بھی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا, قابل انکار نہیں ہے. موت اور حیات یہ دو ایسی حقیقتیں ہیں جو قابل انکار نہیں ہیں, ایک بات. دوسری بات, یہ زوال پذیر نہیں ہے. یہ بڑی بہت ہی مزیدار نقطہ ہے. زوال پذیر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے, ایک فنومنن ہے کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زائل ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو انسانیت تھی اس کے اندر بہت ساری خصوصیات ایسی ہوں گی جو آج کی انسانیت میں نہیں پائی جاتی. فرق پڑ گیا, مطلب ایون انسانوں کی جو باڈی کی میرا خیال ہے کہ جو ساخت ہے, شیپ ہے, ان سب میں فرق پڑ گیا ہوگا. کہ اگر آپ کے پاس پرانے آج سے 5000 سال پہلے, 7000 سال پہلے انسانوں کو وہ آپ دیکھیں تو ان کا نظام الگ ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا تھوڑا فرق ہے. لیکن کیا اس وقت سے لے کر آج تک موت اور حیات کے نظام میں بھی کوئی فرق پڑا ہے؟ نہیں پڑا. یہ زوال پذیر نہیں ہے, مطلب ایک انچینجنگ سسٹم ہے یہ, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, اس میں تغیر نہیں ہے, اس میں زوال نہیں ہے. یعنی یہ پرماننٹ اور فکسڈ سسٹم ہے. دو, تیسری بات, کہ جو کسی کی خواہش پر ڈپینڈ نہیں کرتا, یعنی خود ساختہ نہیں ہے یہ موت و حیات کا نظام, کسی کی خواہش پر ڈپینڈ نہیں کرتا. یعنی کوئی انسان یہ کہے کہ جی مجھے زندہ ہونا پسند نہیں ہے, یہ بھی ایبسرڈ ہے. اور اگر کوئی انسان یہ کہے کہ مجھے مرنا قبول نہیں ہے, یہ بھی ایبسرڈ ہے, ٹھیک ہے. دونوں چیزیں, یعنی یہ تمہاری خواہش پر مبنی نہیں ہے, یہ خود ساختہ نہیں ہے, کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے کہ میں زندہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا, یا مجھے موت آئے گی یا نہیں آئے گی, ٹھیک. تیسرا پہلو. اور چوتھا پہلو کیا ہے کہ جو ایک لحاظ سے ان کا نچوڑ بنتا ہے, کہ یہ پورا کا پورا نظام جو ہے یہ فقط اور فقط خدا پر تکیہ کرتا ہے, نہ کہ کسی اور پر. یعنی متقی بغیر خدا نہیں ہے. اس کا تکیہ, اس کا انحصار, اس کا ریلائنس غیر خدا پر ہرگز ہرگز نہیں ہے. اس نظام میں یہ چار بنیادی خصوصیات ہیں. اور اس بنا پر یہ کس چیز کی دلیل بنتا ہے کہ یہ موت اور حیات کا نظام قائم کرنے والی ہستی وہ خدا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اس اعتبار سے موت اور حیات کا نظام خدا کی موجودگی پر دلیل بنتا ہے. یعنی کوئی بھی شخص ہو, جتنا بڑے بھی ایتھیسٹ ہو, اپنے آپ کو اس سے باہر نکال سکتا ہے کیا؟ کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا تو مجھے موت بھی نہیں آئے گی؟ کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا, ٹھیک. تو ایک جو ہستی جس پر اس پورے نظام کا تکیہ ہے, جو ڈیپینڈنٹ ہے, وہ وہی خدا ہے. اچھا, اس کو اب سے تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں کہ ان دونوں کی, یعنی موت اور حیات کی حکمت کیا ہے. اس کی ضرورت کیا ہے؟ اور وہی والی بات جو آپ شروع میں کر رہے تھے نظام، کہ یہ دونوں چیزیں ایک نظام زندگی کو کریٹ کرتی ہیں یا اس سے متعلق ہیں. جس نظام میں حیات نہیں ہوتی تو اس نظام میں کیا ہوگا کہ ایک لحاظ سے وجود نہیں ہوگا، وجودیت نہیں ہوگی، ایگزسٹنس نہیں ہوگا. اور یعنی حیات کا معنی اگر ہم لیں کہ حیات کس کو ہم کہتے ہیں، کہ حیات کا معنی کہ وہ چیز جس میں نشو نما ہو، گروتھ ہو. حیات کی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مین کوالٹی کیا ہے، یعنی آپ زندگی کو کس کس ایک صفت پر پن کریں گے؟
گروتھ
یا اس سے بھی زیادہ فنڈامنٹل اویئرنیس، سیلف اویئرنیس. ٹھیک ہے، یعنی حیات جو ہے وہ بنیادی طور پر سیلف اویئرنیس کا نام ہے. ہاں تو اسی لیے ان کی حیات جو ہے نا وہ حیات نہیں ہے کہ جو نہیں حیات. ہاں وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ حیات کا ایک پہلو ہے، لیکن حقیقتاً زندگی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جہاں پر وہ سیلف اویئرنیس ہوتی ہے. اب یہ ایک بہرحال ایک پہلو ہے اس کا، یعنی جیسے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جن چیزوں کو ہم مردہ سمجھتے ہیں ان میں بھی اویئرنیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ. لیکن جو شاید موسٹ فنڈامنٹل کوالٹی ہے زندگی کی وہ کیا ہے؟ کہ خود آگہی، شعور اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں شعور. اور جب یہ شعور پیدا ہوتا ہے تو وہاں سے وجود یا ایگزسٹنس کریٹ ہوتی ہے، اور جب ایگزسٹنس کریٹ ہوتی ہے تو وہ پھر تین چیزوں کو لے کر آتی ہے: اندیشہ یعنی فکر، استدلال یعنی ریزننگ، اور اعتقاد یعنی کنیکشنز. صحیح؟ یعنی جو بھی موجود زندہ ہوتا ہے، زندہ یعنی سیلف اویئر ہوتا ہے، تو اس کے اندر پہلی چیز کیا ہوگی؟ ایک فکر ڈیولپ ہوگی، ایک اندیشہ ہوگا اس کے پاس. اندیشہ یعنی ایک سوچ، ایک فکر ہوگی. ٹھیک ہے، اور وہ فکر ظاہر ہے کہ کس سے ریلیٹ کرے گی؟ خود اپنی ذات کی بقا سے، صلاح و فلاح سے. اس کے بعد اس فکر کے ساتھ آئے گا استدلال یا ریزننگ. ریزننگ کی ضرورت کس وجہ سے آتی ہے؟ کہ زندگی کے ہر اسٹیپ پر مخلوق دو راہے پر کھڑی ہوتی ہے، یہ لوں یا نہیں لوں، قدم آگے بڑھاؤں یا نہیں بڑھاؤں، اس رستے پہ جاؤں یا نہیں جاؤں. تو وہاں پر خدا نے ایک جو صلاحیت دی ہے ہر مخلوق کو، وہ کس بات کی صلاحیت دی ہے؟ استدلال قائم کرنے کی. یعنی جب ایک مخلوق ایک رستے کو چوز کر کے دوسرے کو ریجیکٹ کرتی ہے تو ہر مخلوق اپنے لحاظ سے ایک ریزننگ ڈیولپ کرتی ہے، ہر مخلوق اپنے لحاظ سے ایک ریزننگ، اس میں یہ صلاحیت ہے. تو اندیشہ یعنی سوچ و فکر، استدلال، اور پھر انہی استدلال کے نظام کی بنا پر اعتقاد یعنی ریلیشنز اور کنیکشنز بلڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہوگا اس کے ساتھ ہم اپنا تعلق پیدا کر لیں گے، یا ہر مخلوق اپنا تعلق پیدا کر لے گی، اور جہاں سے نقصان نظر آ رہا ہوگا اس سے دوری اختیار کر لے گی. ٹھیک ہے، یعنی گرہ کا بندھنا یا کھولنا. تو یہ کس کی خصوصیت ہے؟ زندگی کی خصوصیت ہے. ٹھیک ہے، یہ لائف ہے، دیٹس ہاؤ لائف از ڈیفائنڈ. اچھا، پھر اس کے بعد یہ تمام کی تمام چیزیں مل کے کیا کرتی ہیں؟ جو بات آپ نے کہی، گروتھ، ایولیوشن. اور گروتھ اور ایولیوشن کس سے مربوط ہوتا ہے؟ حرکت سے. یعنی گروتھ بغیر حرکت کے پاسبل نہیں ہے، گروتھ یعنی حرکت. اچھا، اب جو یہ حرکت ہے یہ ایک ہدف کی طرف ہے، ایک مقصد کی طرف ہے، ایک اینڈ، ایک ڈیسٹینی کی طرف ہے. کیا اس کیا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ یہ حرکت ہمیشہ چلتی رہے؟ کیا نظام ایسا بننا چاہیے؟ یا ये हरकत जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो ताकि मखलूक एक स्टेबल और एक अच्छे मकाम पर आ जाए। कौन सा निज़ाम बेहतर है, कि बस चलता रहे या नहीं, या वो एक रुके, एक स्टेबिलिटी वाली हालत में आए, स्टेज में आए। तो वो जो कट ऑफ स्टेट है कि जहां पर मखलूक की हरकत को रोक दिया जाता है कि और उसको फिर एक स्टेबल जगह पर भेज दिया जाता है, उस कट ऑफ स्टेज का नाम क्या है?
मौत
है। ठीक, बात समझ में आ रही? तो जो निजाम जिंदगी है वो खुदा ने इस तरीके से बनाया है, इन्हें हयात है, हयात की ये खसूसियात है कि जिनके जरिए से मखलूक एवॉल्व करती है, उसमें नशोनुमा आती है, उसमें इर्तका होता है। लेकिन ये कोई हिकमत नहीं है कि आप उसको जो है ना छोड़ दें यूं ही, कि बस वो हर वक्त जो है ना वो मुसलसल हरकत ही करती रहे, बल्कि उसके लिए एक कट ऑफ स्टेट है कि वो हरकत होते 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 एक स्टेबल जगह पर आना शुरू हो जाती है, और वहां पर एक चीज आती है मौत या ज़ाइक़तुल मौत, कि जो उसको वहां से चीज को खत्म करके और उस मौजूद और मखलूक को एक स्टेबल वर्ल्ड में भेज देता है, मुंतकिल कर देता है। ठीक है, यानी कि जिसको फिर हम अपनी जबान में ये कहते हैं कि यानी जो दीन की जबान में अगर हम इसको समझना चाहें कि जब मखलूक इर्तका पा रही होती है तो उसमें सिफात पैदा होती हैं, और जब सिफात नफ्स के अंदर मुस्तहकम हो जाती हैं तो उस वक्त मखलूक की जात स्टेबल हो जाती है। बात समझ में आ रही है? यानी जब सिफात मुस्तहकम हो जाती हैं, यानी कि हम इस बात को खुद महसूस कर सकते हैं कि जब हम 40 इयर्स एंड बियॉन्ड की एज तक पहुंचते हैं तो हमारे अंदर जो क्वालिटीज होती हैं वो मुस्तहकम हो चुकी होती हैं। नौजवानी में ऐसा नहीं होता, नौजवानी में मर्क्यूरियल नेचर जो है ना वो हर एक को फील हो रहा होता है। बहुत कम लोग होते हैं कि जो जवानी में मोहकम सिफात पैदा कर लें, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। लेकिन आफ्टर 40 जो है वो ये चीज हर इंसान महसूस कर रहा होता है, और इसी बिना पर हम इस बात को भी देख सकते हैं कि जब हम 50 या उससे ऊपर की एज तक पहुंचते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जिनको हम चाह रहे होते हैं कि मैं ना करूं, लेकिन फिर भी हो रही होती हैं। उसकी वजह क्या होता है कि उससे रिलेटेड सिफत मेरी जात में मुस्तहकम हो चुकी है, जड़ पकड़ चुकी है। तो यानी कि ये सिस्टम क्या है कि जैसे जैसे हम मौत के मरहले से करीब होते जा रहे होते हैं, मेरी जात के अंदर जो वो स्टेबिलिटी है बजरिए सिफात वो अटेन होती चली जाती है। तो ये निजाम है हयात व मौत है कि फिर एक सर्टेन टाइम पर आके वो जो यानी मौत का जो मरहला है वो फिर उस हयात वाले सिलसिले को यानी उस ग्रोथ और एवोल्यूशन वाले सिलसिले को एक उसके एक फेज को खत्म करके और आपको अगली जगह पे भेज देता है। और आगे जो आलम है वहां पे क्या है, ऐसा नहीं है कि वहां पे ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन ग्रोथ किस पर, किसकी बुनियाद पर होगी? आपकी सिफात की बुनियाद पर होगी। ठीक है, अब नए सिरे से नहीं होगी। जैसे इस दुनिया के अंदर जब हम थे तो हमारे पास पॉसिबिलिटी थी कि हम नई से नई चीजों को ला सकते थे, नई से नए काम कर सकते थे, नई नई सिफात अपने अंदर पैदा करा सकते थे। ठीक, लेकिन अब जो है वो उसके बाद जब आप मिसाल के तौर पर बरजख में चले गए तो वो चीज फिर कम हो गई। तो ये निजाम समझ में आ गया, मौत और हयात। और ये पूरा का पूरा निजाम जो है वो किस पर डिपेंड करता है? एक इसके ओरिजिनेटर पर, जिसने इसको बनाया है। और जैसा कि यहां पर इस बात को बयान फरमा रहे हैं कि यानी ये चीज हमें वजाहत से समझ में आती है इस निजामे मौत और हयात पर गौर करके कि इसमें किसी भी इंसान की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है या नहीं? किसी की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी इंसान की इस निजाम को ओरिजिनेट करने में और इसको एग्जीक्यूट करने में। कोई इससे एस्केप नहीं कर सकता, किसी की मर्जी को ये फॉलो नहीं करता, ठीक।
वो जो उरफा अपने बदन से अपनी रूह को अलहदा कर लेते हैं, वो क्या है?
नहीं, वो रूह को अलहदा करने वाली बात नहीं होती, वो यानी उसमें ये चीज है कि जो मर्ग इख्तियारी की जो बात होती है, तो मर्ग इख्तियारी का मायना असल में ये है कि इंसान फना होने वाली चीजों से अपने कल्ब को अलग कर ले, ठीक है। ये मर्ग इख्तियारी एक बात, यानी असल मर्ग इख्तियारी जो है कि इंसान अपने इख्तियार से उस जगह पर जा सकता है कि अब कि उसकी मौत वाकई हो जाए, यानी कि उसका कल्ब जो है वो तमाम फना हो जाने वाली चीजों से बिल्कुल मुनक़ता हो जाए। और बाज़ औक़ात ये चीज पॉसिबल होती है, बहुत थोड़े से केसेस में, जो कुछ मिसाल है, यानी ये भी बिल्कुल 100% हम यकीन से नहीं कह सकते कि इंसान का नफ्स जो है वो मिसले ख्वाब बेदारी में भी बदन से जुदा हो जाए। यानी जैसे नींद की हालत में तो ये होता ही है ना, तकरीबन सबके साथ होता है, लेकिन कुछ लोग इस वाली चीज को बेदारी की हालत में भी अकम्प्लिश कर सकते हैं या कर लेते हैं, यानी इतना ज्यादा वो अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लेते हैं।
तो वो अपने नफ्स को बाहर रोक सकते हैं अपने जिस्म से?
नहीं, जैसे आप ख्वाब में आपको वापस आना है
जी।
जब तक कि वो मौत वाला हुक्म नहीं है, तो इसी तरीके से वो भी
वापस
आना है, वरना असल मर्ग इख्तियारी का मतलब वो है कि ये हाँ, यानी जो इमाम अली अलैहिस्सलाम का भी जुमला है कि मूतु कबल अंत मूतु, कि अपने मौत के मरहले से गुजर जाओ कबल इसके कि तुम्हें मौत दी जाए। तो मौत क्या है कि ये ने दार फना से इनकता है, तो इंसान के पास ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि अपनी तरबियत और तहजीब नफ्स की बिना पर उस मरहले से पहले यानी मौत का वक्त अपने इंतकाल से पहले ले आए, मौत इंतकाल से पहले आ जाए, ये पॉसिबल है, तो वो मर गए इख्तियारी है।
और जैसे वो शोहदा के सेल्फ अवेयरनेस आपने बताया, शोहदा के
हाँ मक्तूलीन फी सबीलिल्लाह
के वो को मौत था कि रूह तो निकल गई, जाहिर है जो हमारा कांसेप्ट है रूह तो जिस्म से जुदा हो गई, अगर अल्लाह करे को जिंदा जिंदा भी। और फिर सूरह हशर की वो जो लाउंजला हादल कुरान वाली में उससे पहले वाली जो आयत है कि उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अपने आप को भुला दिया।
हाँ, और लोग जीते जी मैयत भी हो जाते हैं,
तो
दोनों 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 चीजें हैं कि जीते जी मैयत भी हो जाते हैं, यानी मैयत का मतलब है कि मुर्दा भी हो जाते हैं और जीते जी हयात उखरवी में भी चले जाते हैं।
दोनों
पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं, यानी इंसान को खुदा ने दोनों चीजें दी। यहां पर एक चीज को और जिक्र करके हम आज की हद तक बात खत्म करते हैं कि फरमाते हैं कि जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एहतजाज है वो भी इसी चीज पर मबनी है। यानी एहतजाज आप समझते हैं ना, एहतजाज यानी ऑब्जेक्शन नहीं, हाँ मतलब आर्ग्यूमेंट्स, एहतजाज यानी आर्ग्यूमेंट। जैसे पूरी एक किताब है अल्लामा तबरसी की, एहतजाज तबरसी, तो उसमें उन्होंने जो आइमा अलैहिस्सलाम के आर्ग्यूमेंट्स हैं मुख्तलिफ लोगों से सारे वो नकल किए हैं, वो अच्छी मज़ेदार किताब है वो। तो इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो एहतजाज है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 258 में नकल किया है, नमरूद नाम लिए बगैर नमरूद के साथ, के अलम तरा इल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिही, के क्या तूने उसको नहीं देखा कि जो जिसने इब्राहीम से उसके रब के बारे में हुज्जत की, भाई एहतजाज, अन आताहुल्लाहुल मुल्क, किस बारे में कि खुदा ने उसको बादशाह बना दिया था और उस नेमत का शुक्राना उसने इस तरीके से अदा किया कि इब्राहिम से वो उसके रब के बारे में झगड़ा करने लगा। इज़ क़ाला इब्राहिमो रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीत, यानी देखें इस आयत से हमें ये बात समझ में आ रही है कि हया तो मौत का निज़ाम किससे रिलेट करता है? तौहीद रुबूबी से रिलेट करता है। यानी युही व युमीत किस सिफत खुदा के अंडर में ला रहे हैं हजरत इब्राहिम? रब्बी, रब्बी। ये तौहीद रुबूबी है, यानी ये रुबूबियत के पैकेज का हिस्सा है, जिंदा करना और मौत देना। इन रब्बियल लजी युही व युमीतो, कि मेरा रब वो है कि जो जिंदा करता है और मौत देता है। काला अना उही व उमीत, उसने कहा कि मैं जिंदा करता हूं और मैं मौत देता हूं। यहां पर एक जो तफसीर में एक बात कहते हैं कि जो लतीफ जुमला है कि अगर वो ये कहता मिसाल के तौर पर कि वा अना और मैं, तो इसका मतलब क्या होता कि वो अपने को शरीक करार दे रहा है कि ठीक है तुम्हारा रब जो है वो जिंदा और मुर्दा करता है, मौत देता है, तो मैं भी ये काम करने, आई टू कैन डू दैट। नहीं, उसने वाह के साथ नहीं कहा अना, नहीं मैं वो हूं जो करता हूं, तुम्हारा रब नहीं करता ये काम, मैं करता हूं, जिंदा करता और मौत देता हूं। قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب, تو ابراہیم نے اب اس کے جواب میں کہا کہ پس بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو تو اس کو مغرب سے نکال کر لے آ, فبہت الذی کفر, تو وہ مبہوت ہو گیا وہ کافر, واللہ لا یہد القوم الظالمین, اور خدا ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ دیکھ یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اس بعد والی جو دلیل ہے اس کا پہلے والی دلیل سے تعلق کیا ہے؟ یعنی اب یہاں پر پوسیبلٹی یہ ہے کہ دیکھیں حضرت ابراہیم کو اس نے پوچھا اللہ کون ہے, تمہارا رب کون ہے, انہوں نے ایک دلیل دی, دلیل کیا دی؟ جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے, یہ دلیل دی۔ اس نے کہا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں, یعنی میں بھی نہیں, سوری, آیت کے اس میں میں یہ کام کرتا ہوں, یعنی میں حیات و موت کا مالک ہوں کہ میں جس کو چاہوں چھوڑ دوں, جس کو چاہوں قتل کر دوں, یہ پروف دے رہا ہے وہ۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ پس بے شک اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کر لا۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ میری پہلی دلیل ناقص تھی, کمزور تھی, اور اس کو میں ایک دوسری مضبوط دلیل سے ریپلیس کر رہا ہوں, یا دلیل سیم ہے صرف بات کرنے کا انداز مختلف ہے کہ جو اس کو قانع اور قائل کر رہا ہے؟ کون سی بات ان میں سے درست لگتی ہے آپ کو؟ تو سیم کیسے ہے؟
اللہ کی صفات ظاہری طور پہ تو سیم نہیں ہے, مگر وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز کی نشو نما یا زندگی کی جو وہ ہے وہ سورج کے ذریعے سے ہوتی ہے, یعنی جو بھی چیز نشو نما پاتی ہے وہ سورج ایک سورس کے ذریعے سے پاتی ہے, تو وہ سورس جو ہے وہ جیسے اللہ کے رب کے انڈر ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسی کی وجہ سے گروتھ ہوتی ہے, تو وہ اس کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے نکالتا ہے۔
اس پر سوچیں گے ہے بڑا
بات کی بھی ہے کہ جو ظالم ہوتے ہیں وہ حق کو چھپاتے ہیں, تو پہلی والی دلیل تھی وہ اس میں بولا حق کو ایزی چھپا سکتے ہیں, ایزی تو نہیں لیکن جو ظالم ہے اس کو چھپا دیتے ہیں, لیکن دوسری والی دلیل کے اندر وہ کوئی طریقہ نہیں حق کو چھپانے کا۔
دیکھیں یہاں پر آپ ایک بات پہ غور کریں کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو یہ ایکویلنٹ ٹو زندہ ہونا ہے یا نہیں ہے؟ احیاء سورج ہے یا نہیں ہے جب وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے, اور جب وہ مغرب میں غروب ہو جاتا ہے تو یہ اس کی موت ہے یا نہیں ہے فار دا ڈے؟ یعنی سورج ہر روز زندہ ہوتا ہے اور سورج ہر روز مرتا ہے, बात समझ में आई आपको?
यानी वो उसके जवाब दे रहे हैं कि अगर तू जिंदा करता है, तू मारता है, तो ये जिंदा कर और
इस मुर्दे को जिंदा कर दो
और मार दो, यहाँ से जिंदा कर दो।
फाती बेहा मिनल मगरिब, यानी सूरज मर गया ना मगरिब में जाके,
जिंदा करो,
जिंदा करो, ले आओ वापस। सही। तो यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसका मतलब क्या है कि बुनियादी तौर से जो रब की दलील है, रबूबियत पर जो मेन दलील है, वो मौत और हयात है। और मौत और हयात हर मखलूक की अपनी नौयत से, यानी हर मखलूक की मौत और हयात का निज़ाम अलग है। इमाता और अहिया जो है ना, हर मखलूक का अलग है। ठीक है, यानी जैसे इस पर उन्होंने बहुत अच्छा वो है रूमी की दीवान शम्स में पूरी एक गज़ल है कि जिसमें उन्होंने इसी बात को कहा है कि मेरे, यानी जब मेरा जनाजा रवा हो, इस तरीके से कि जब मेरा जनाजा रवा हो तो उस पर अफसोस मतलब करने की ज़रूरत नहीं है। कि वो उन्होंने बहुत सारी मिसालें दी हैं कि सूरज जब मग़रिब में ग़ुरूब होता है तो इसलिए ग़ुरूब होता है कि अगले दिन मशरिक़ से तुलू होगा। तो मेरा जो गुरूब है वो एक और शुरूक की बुनियाद है। मेरा दुनिया में गुरूब होना किसी और आलम में तुलू होने के लिए है। वो कौन सा दाना है जो जमीन में जाता है मरने के लिए? दाना जमीन में जाता है ताकि उगे और एक दरख्त को, फलदार दरख्त को परवान चढ़ाए। ठीक है, बहुत खूबसूरत है वो रूमी की पूरी नज़म। तो ये जो हयात व मर्ग की दलील है, ये क्या है? ये तौहीद रुबूबी का सबूत है, यानी तौहीद रुबूबी को साबित करती है। कि यूं नहीं है कि एक मखलूक है कि बस वो यूं ही जिंदा हो गई, मर गई, ख़त्म हो गई। मर्ग नाबूदी नहीं है, मर्ग फना नहीं है, मर्ग मौत मिट जाना नहीं है। बल्कि और इसी इस बात को समझाने के लिए देखें, मैं आपको एक और बात भी है जो बड़ी बहुत खूबसूरत पहलू है ये कि हम सूरतुल मुल्क की जो इब्तदाई आयतों में पढ़ते हैं तबारक लजी बेदहल मुल्क, उसमें क्या है? खलकल मौता वल हयाता लियब्लुअकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यानी हयात से पहले मौत की खिलकत को बयान किया कि उसने खल्क किया मौत और हयात को, मौत और जिंदगी। तो यानी कि हम इस जिंदा होने से पहले भी मौत की हालत में थे। ठीक है, आप इस बारीक पहलू को समझ रहे हैं? यानी जब खुदा ये कह रहा है कि तुम इससे, इस जिंदगी से पहले मौत की हालत में थे और उस मौत की हालत से हमने निकाल कर तुमको हयात दी, तो यानी इसका मायना ये है कि हर मौत के बाद एक हयात आती है। सही बात समझ में आ रही? यानी हर मौत के बाद एक हयात है। तो अगर अभी भी इस हयात के मरहले को पूरा करने के बाद तुम मौत से मुलाकात करोगे, अगर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत है, तो उस वो मौत तुम्हारे लिए एक नई जिंदगी को लेकर आएगी। जिस तरीके से कि तुम्हारे पहले मौत वाली हालत में तुम मौत में नहीं फंसे रहे, मौत वाली हालत में नहीं रहे, बल्कि वो मौत पेश खेमा बनी इस हयात में तुम्हारे आने का, इस जिंदगी के अंदर तुम्हारी इस जिंदगी की पैदाइश का। तो इसी तरीके से जब ये जिंदगी का मरहला खत्म हो के मौत तक पहुंचेगा तो वहां से फिर एक नई जिंदगी का आगाज होगा, क्योंकि मौत कभी भी एंड ऑफ क्रिएशन नहीं है। हर मौत एक नई जिंदगी को जन्म देती है, मौत एक नई जिंदगी तक जाने का पेश खेमा है। ठीक, तो इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा एक दो चीज़ें और बयान करके फिर हम आगे चलेंगे। लेकिन आई होप कि आज जो ये दो बातें हमने की ये भी आपके जहन में रहेंगी इंशाल्लाह ताला। اور یہ کہ ہم اتنی ہمت پیدا کریں گے اپنے اندر کہ اپنے آپ کو ایلیویٹ کریں کہ وہ جو ایک کامن ٹریک ہے اس سے بلند ہو کر, یعنی وہ جگہ ہے کہ جس کی طرف واقعا دین ہم کو لے جانا چاہتا ہے, پہنچانا چاہتا ہے. اللہم صلی اللہ علی محمد. جی صفات کی گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ ہر صفت جو ہے نا وہ آپ کے لیے لائک اے سیڈ ہوگی. یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر کسی انسان میں صفت ایمان ہے, ایمان ایک صفت ہے, تقوی ایک صفت ہے, اس صفت کی ایک حقیقت ہے, ٹھیک ہے, تو یعنی جو بھی اچھی صفت انسان کے اندر ہوتی ہے, جیسے خدا تعالیٰ فرما رہا ہے جو قرآن کریم کی ان آیتوں کا آپ دیکھیں کہ جس میں اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی تم مطلب جو نیکی تمہارے اندر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ ہمیشہ ملٹی پلائی ہوتی ہے نا, 1:7, 1:70, 1:700 جتنی نیکی کے اندر خوبی ہے. تو یہاں سے آپ کو وہ کلو مل رہا ہے کہ ہر اچھی صفت کس بات کی صلاحیت رکھتی ہے, ایمپلیفائی ہونے کی, میگنیفائی ہونے کی, ڈپینڈنگ آن ہماری اخلاص یا جو ہماری کوالٹی آف نفس ہے اس کی بنیاد پر. تو یعنی ہر صفت جو ہے وہ ایک حقیقت رکھتی ہے, ہر اچھی صفت خدا سے مربوط ہے. اگر آپ اس کو بہت ہی سادہ الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو یعنی ہر اچھی صفت کو خدا پروان چڑھاتا ہے, ہر اچھی صفت کو خدا گرو کراتا ہے. تو اگر کسی بھی اچھی صفت کا بیج میرے اندر ہوگا تو خدا کا ہاتھ اس کو گرو کرائے گا.
اور اگر کوئی خراب صفت کے ساتھ کیا
تو وہ جتنی ہے اتنی ہے, اتنی ہی ہے.
یہ نہیں ہو سکتی وہ
ڈیمینش پاسبلٹی ہے, دونوں پاسبلٹیز ہیں, دونوں پاسبلٹیز ہیں, یعنی ڈیمینش بھی ہو سکتی ہے, انہانس بھی ہو سکتی ہے. انہانس ہونے کا مسئلہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان کے گناہ کے اثرات ملٹی پلائی ہوتے چلے جائیں,
گناہ جاریہ ثواب جاریہ,
لیکن وہاں پہ تو نہیں ہوں گے.
کیوں نہیں؟
دیکھیں یہ آپ ایک بات پہ غور کیجئے, ہم نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ گناہ کبیرہ کی, ویسے تو بہت مشکل ہے گناہ کو کبیرہ صغیرہ میں ڈیوائیڈ کرنا, لیکن گناہ کبیرہ کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے کہ انسان, میں ایک عارف کی محمد تقی عام علی ان کے بیان کردہ جملہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ وہ گناہ جس کا مداوع, جس کا کفارہ ممکن نہیں ہوتا وہ کبیرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے قتل, جیسے فعل حرام کرنا جس سے ایک اولاد حرام پیدا ہو جائے, اس کو ریورس کیسے کرے گا کوئی؟ یعنی وہ خرابی جو ایک انسان نے کریٹ کر دی نظام میں, اس کا ریورژن پاسبل نہ ہو, وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. تو اب گناہ کبیرہ کے اندر جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ کیا ہے؟ یہ ملٹی پلائی ہوتا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا, ناحق قتل کر دیا, اب اس کے کتنے اثرات ہوں گے؟ اگر اس کے زیر کفالت لوگ ہیں, بچے ہیں, اب ان بچوں کے سر پر سے باپ کا سایہ ہٹ گیا, اب وہ بچے زندگی میں خرابی کی طرف جائیں, برائی کی طرف جائیں, وہ جائیں, وہ ساری کی ساری مصیبت کہاں جا رہی ہے؟ کون اس کا باعث بنا ہے؟ اگر کوئی کسی ناجائز اولاد کے پیدا ہونے کا سبب بن گیا, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فعل حرام سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے, سب سے بڑی مصیبت اس غریب کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ اس کی فطرت پر پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی وہ فطرت توحیدی پر پردے لے کر پیدا ہوتی ہے. اب وہ جو اس زندگی میں جس مصیبت عذاب میں مبتلا ہوگی, اس کو کون بھگتے گا؟ وہ ذمہ دار ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ تو مر گیا, लेकिन ये पीछे जो गुनाह है जारिया है या नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऐसे ही अच्छाई भी है, इन्हें दोनों तरफ है जीवन तो। लेकिन खुदा खुदा बुराई को एम्पलीफाई नहीं करता, ठीक है, ये इंसानों के करतूत हैं। अभी हो रही है कि नहीं हो रही बताएं, जिन्होंने गुनाहों के ये सारे रखे हैं, जिन लोगों ने गुनाहों के नऊज़ु बिल्ला मराकिज कायम किए, इस तरीके के मतलब औलाद के इंसानों की पैदाइश का सबब बने, या जिन्होंने ऐसी किताबें लिखी जिनको पढ़ पढ़ के लोग गुमराह हों, तो ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा।
1400 साल पहले जिन्होंने गलत किया
जो भी किया,
कितनी नस्लें आगे खराब।
तो खुदा नहीं मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन खुदा जो हर अच्छी सिफत है क्योंकि ताल्लुक ब खुदा रखती है, तो बइज़्निल्लाह उसमें ग्रोथ है, उसमें एम्पलीफिकेशन है, उसमें मैग्निफिकेशन है, हर अच्छी सिफत में। तो आप जितनी भी अच्छी सिफात के बीज अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो आप वो सिफात मुसलसल तरक्की पाएंगी, वो बढ़ेंगी। फिर यानी उसको आपकी अमल की ज़रूरत नहीं। इमाम खुमैनी ने एक बहुत खूबसूरत जुमला कहा है, मतलब बाज जुमले ऐसे होते हैं ना, इतने क्लास के जुमले होते हैं बुजुर्गान की तरफ से, कि इंसान की एक यानी वही जो मैं दो लेवल्स की बात कर रहा था कि हम, आपने एक जुमला सुना होगा ना, बल्कि हम जो कहते हैं तकलीफ शरई, तकलीफ शरई, तकलीफ शरई का मतलब क्या है कि जी खुदा खुदा के हुक्म से हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़ें वाजिब हैं, बचना है हराम से, बचना है वाजिब को अंजाम देना है, ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं, ये तकलीफ शरई हैं। तकलीफ यानी हम उसको एक लिहाज से हम पर एक
बोझ
भी है, बोझ भी है, हम उसके मुकल्लफ हैं, जिम्मेदार हैं। वो ये कहते हैं कि जब इंसान इस मरहले पे आगे चलता जाता है तो एक वक्त वो आता है कि जब तकलीफ मुनक़ता हो जाती है और इंसान की हरकत जज्ब की वजह से होती है न कि तकलीफ की वजह से। दैट इज सो ब्यूटिफुल। एक वक्त वो आता है बंदे के इर्तिका में कि जब तकलीफ मुनक़ता हो जाती है, फिर ये सब नहीं है कि आपको यानी नमाज पढ़ना है, रोज़ा रखना है, बल्कि ये तमाम की तमाम चीज़ें आपकी जितनी भी इबादात हैं ये खुदाई असर है, खुदाई जज्ब है जिसके तहत ये सब अंजाम पा रही हैं। ये पढ़ना और रखना और करना नहीं रहता, फिर उस सबसे इंसान ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत जुमला उन्होंने कहा कि एक मरहले पर पहुंचकर तकलीफ मुनक़ता हो जाती है, तकलीफ फॉरएवर नहीं है, ठीक है। जब इंसान, वही जो बात मैं आपसे कह रहा था ना, जब इंसान उससे कनेक्ट हो जाता है, जब वो उसकी हकीकत तौहीद की हकीकत तसव्वुर से निकल कर हकीकत बनना शुरू हो जाती है, जब पहले आप रात के अंधेरे में होते हैं और सूरज का तसव्वुर कर रहे होते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ डॉन वो सूरज आपके सामने तुलू होना शुरू हो जाता है, तो फिर जब आप उसकी रोशनी में आते हैं ना, तो फिर आपको किसी मसनूई रोशनी की जरूरत नहीं रहती, फिर आपको मुख्तलिफ रीजंस की जरूरत नहीं रहती चीजों को डिफाइन करने की, फिर हर चीज उसका नूर आपको बता रहा होता है। तो वो हरकत बहालत जज्ब होती है। नहीं, तौबा तो कहते ही उसको हैं कि जो नंबर वन गुनाह को खत्म करे, खत्म करने की तरफ यानी इंसान को गुनाह से अलग हटाए, और मगफिरत का मतलब यह होता है कि गुनाह के असरात खत्म हो जाएंगे।
तो इस सूरत में जो गुनाह कबीर है तो तौबा इज मतलब
ज़रूरी नहीं है, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, क्योंकि रहमत खुदा गुनाहान कबीरा की भी मगफरत कर सकती है, कोई उसके आगे कोई रुकावट नहीं है। चाहिए अगरचे के आप लोगों को याद हो, मैंने बहुत पहले आपको किताब लिखा अल्लाह से वाकया भी सुनाया था, گناہ کبیرہ کا, لیکن بہت مشکل ہو جاتا ہے, وہ بہت زیادہ مشکل ہے
کیونکہ وہ ایک نظام کے تحت گرو کر رہی
ہے. ہاں وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اس بات کو دیکھیں نا کہ یعنی انبیاء کوئی غلطی نہیں کرتے, لیکن فقط اور فقط کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر ڈسیشن میکنگ میں اوپر نیچے ہو جاتا ہے, یعنی با فضیلت کی جگہ کم فضیلت والی چیز لے لیتے ہیں اور ان کے لیے کتنی مشکلات آ جاتی ہیں. تو یعنی واقعاً یہ معاملات ہیں بہت خطرناک. جی